आज हम हजारों साल पीछे चलकर एक ऐसी दुनिया की पड़ताल करेंगे जो आज भी हमें हैरान करती है, हड़प्पा सभ्यता।
बिल्कुल।
हमारे पास कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस सभ्यता के कुछ सबसे बड़े रहस्यों पर रोशनी डालते हैं,
और हमारा मिशन है इन जटिल सवालों को सरल बनाना।
तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हड़प्पा की बात होती है, सबसे पहले जिक्र आता है उनके शहरों का। हमारा पहला सवाल भी इसी से जुड़ा है। The most unique feature of the Harappan civilization was the development of urban centers. Explain. आखिर उनके शहरों में ऐसा क्या था जो उन्हें इतना अनोखा बनाता है?
ये सवाल बिल्कुल सही जगह पर है। देखिए, उस जमाने में दुनिया में और भी सभ्यताएं थीं, पर हड़प्पा के शहरों जैसी प्लानिंग और व्यवस्था वो कहीं नहीं थी।
अच्छा।
हाँ, उनकी सबसे बड़ी खासियत थी एक रूपता, जिसे हम यूनिफॉर्मिटी कहते हैं।
यूनिफॉर्मिटी
मतलब लगभग हर शहर दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक छोटा ऊंचा हिस्सा जिसे आर्कियोलॉजिस्ट सिटाडेल कहते हैं,
सिटाडेल,
और एक कहीं ज्यादा बड़ा निचला हिस्सा जिसे लोअर टाउन या निचला शहर कहा जाता है।
दिलचस्प है, लेकिन ये सिटाडेल और लोअर टाउन का जो बंटवारा था, क्या ये सिर्फ अमीर और गरीब का बंटवारा था?
ये बहुत जरूरी सवाल है। सिटाडेल को मिट्टी ईंट के ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था, जो उसे शायद बाढ़ से बचाता था। यहां से हमें ग्रेट बाथ और वेयरहाउस जैसी बड़ी इमारतें मिली हैं, जिनका इस्तेमाल शायद पूरा समुदाय करता होगा।
तो एक थ्योरी ये है कि ये सत्ता का केंद्र था।
बिल्कुल। लेकिन दूसरी थ्योरी ये भी है कि ये सिर्फ एक सामुदायिक जगह थी और हड़प्पा समाज में कोई एक राजा नहीं था।
अच्छा, मतलब ये बहस का मुद्दा है।
हाँ, ये अभी भी एक रहस्य है।
और ये जो प्लानिंग थी, ये सिर्फ एक शहर तक तो नहीं थी, है ना? मुझे सबसे हैरान करने वाली बात उनकी ईंटें लगती हैं।
हाँ, उनकी ईंटें वो सिर्फ मिट्टी के टुकड़े नहीं थे, बल्कि आप कह सकते हैं इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना थे।
वो कैसे?
चाहे वो हड़प्पा में निरी हो या 400 किलोमीटर दूर मोहनजोदड़ो में, उनका जो अनुपात था यानी रेशियो, वो हमेशा 1:2.4 का होता था।
1:2.4?
इसका मतलब क्या था? कोई खास वजह?
ये कोई रैंडम नंबर नहीं था, ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का कमाल है। इसका मतलब था कि एक ईंट की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी थी और मोटाई से चार गुनी थी।
ठीक है।
इससे उन्हें किसी भी दिशा में ईंटें जोड़ने पर एक बेहद मजबूत जोड़ मिलता था। ये दिखाता है कि वो सिर्फ चीजें बना नहीं रहे थे, बल्कि सोच समझकर डिजाइन कर रहे थे।
कमाल है। और निचले शहर की बात करें तो जहां आम लोग रहते थे, वहां की क्या खासियत थी?
वहां भी प्लानिंग साफ दिखती है। घर एक आंगन या कोर्टयार्ड के चारों ओर बने होते थे, जिससे घर के अंदर प्राइवेसी बनी रहती थी।
अच्छा।
और हर घर में अपना बाथरूम होता था, जिसकी नालियां घर के बाहर सड़क की मुख्य नाली से जुड़ी होती थी।
मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उनका ड्रेनेज सिस्टम।
हाँ, वो तो अद्भुत था। आज भी हमारे शहर एक घंटे की बारिश में भर जाते हैं। वो लोग 4,500 साल पहले ऐसा सिस्टम कैसे बना पाए?
आप बिल्कुल सही कह रही हैं। उनकी सड़कें एक दूसरे को समकोण यानी राइट एंगल्स पर काटती थी, जिसे ग्रिड पैटर्न कहते हैं।
ग्रिड पैटर्न।
और इन सड़कों के किनारे ढकी हुई नालियां होती थी। इन नालियों को साफ करने के लिए बीच बीच में मैन होल्स भी बने होते थे। ये सिर्फ सफाई नहीं, बल्कि पब्लिक हेल्थ को लेकर उनकी गहरी समझ को दिखाता है।
तो मतलब अगर हम परीक्षा के नजरिए से देखें तो तीन बातें सबसे जरूरी हैं। पहला, सिटाडेल और लोअर टाउन वाला प्लान स्ट्रक्चर। दूसरा, 1:2.4 रेशियो वाली स्टैंडर्डाइज्ड ईंटें।
और तीसरा, वो कमाल का ड्रेनेज सिस्टम।
बिल्कुल। ये सब मिलकर एक ऐसे समाज की तस्वीर बनाते हैं जो बेहद संगठित था
और अपने समय से बहुत आगे था।
ये सब सुन के तो लगता है कि ये सभ्यता हमेशा चलती रहती। इतनी एडवांस्ड प्लानिंग, फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये शानदार शहर 1800 ईसा पूर्व के आसपास वीरान होने लगे? हमारा अगला सवाल इसी पहेली पर है। देर इज एविडेंस दैट बाय सका 1800 BCE मोस्ट ऑफ द हरप्पन साइट्स हैड बीन अबैंडन्ड। सब्सटेंशिएट द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉजेज एंड एविडेंसेस।
ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पहेली है। हमें 1800 BCE के बाद एक बड़ा बदलाव दिखता है।
क्या सबूत है इसके?
पहला सबूत है हड़प्पा की खास चीजों का गायब हो जाना। चोलिस्तान जैसे इलाकों में बस्तियां खाली हो गईं, जो उनकी पहचान थी, जैसे वजन करने वाले बाट, खास तरह के मनके और उनकी मशहूर मोहरें, वो मिलनी बंद हो गईं।
मतलब उनकी पूरी जीवन शैली ही बदल रही थी। और उनके शहरों का क्या हुआ?
दूसरा सबूत वहीं से मिलता है, निर्माण की तकनीक में गिरावट। जिसे हम डिटीरियोरेशन इन कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स कहते हैं।
अच्छा,
घर बनाने की तकनीक खराब हो गई, बड़ी बड़ी सार्वजनिक इमारतें बननी बंद हो गईं, जो नए घर बने भी वो पुराने घरों के मलबे पर ही बना दिए गए।
ये तो अजीब बात है, एक तरफ उनकी तकनीक खराब हो रही थी और दूसरी तरफ मैंने पढ़ा है कि आबादी फैल रही थी, ये कैसा माइग्रेशन था?
बहुत अच्छा सवाल है। हमें आबादी का गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों की ओर विस्तार दिखता है।
तो लोग मुख्य शहरों को छोड़ रहे थे?
हाँ, ऐसा लगता है। इस दौर को आर्कियोलॉजिस्ट लेट हरप्पन फेस कहते हैं।
तो ये सब हुआ क्यों? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या कोई एक बड़ी घटना थी?
शायद कोई एक घटना नहीं, बल्कि कई चीजों का मिला जुला असर था। एक मजबूत थ्योरी है क्लाइमेट चेंज।
क्लाइमेट चेंज मतलब सूखा पड़ना?
हाँ, शायद बारिश का पैटर्न बदल गया हो या सूखा पड़ना शुरू हो गया हो, जिससे खेती बर्बाद हो गई।
और कोई वजह?
दूसरी वजह हो सकती है डिफॉरेस्टेशन, यानी जंगलों की कटाई। ईंटें पकाने, तांबा गलाने के लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर जंगल साफ किए होंगे।
मोहनजोदड़ो में तो बाढ़ के भी सबूत मिले हैं।
हाँ, बार बार आने वाली बाढ़ ने भी शहरों को तबाह किया होगा, लेकिन शायद सबसे बड़ा कारण नदियों का रास्ता बदलना या सूख जाना रहा हो।
अच्छा, नदियाँ सूख गईं?
हो सकता है, टेक्टोनिक शिफ्ट्स की वजह से सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया होगा, या फिर घग्गर हाकरा नदी, जिसे कई लोग सरस्वती नदी से जोड़ते हैं, वो सूख गई होगी।
और नदी के बिना तो शहर का बचना नामुमकिन था।
बिल्कुल, तो ये किसी एक रात में हुआ इवेंट नहीं था, ये एक धीमी प्रक्रिया थी जिसने उस महान शहरी सभ्यता को ग्रामीण संस्कृति में बदल दिया।
तो अगर इस सवाल का जवाब देना हो तो सबूतों में डिस्टिंक्टिव फीचर्स का गायब होना, कंस्ट्रक्शन में गिरावट और माइग्रेशन का जिक्र करना होगा।
सही, और कारणों में क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, बाढ़ और नदियों का सूखना, ये पॉइंट जरूरी हैं।
ठीक है, तो जो भी हम जानते हैं वो उन चीजों से आता है जो वो अपने पीछे छोड़ गए, और शायद कोई भी चीज उनकी मोहरों से ज्यादा दिलचस्प नहीं है।
सही बात है।
अगला सवाल इसी पर है। हिस्टोरियंस कंसिडर द हरप्पन सील्स एज द डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट। एग्जामिन दिस स्टेटमेंट।
हड़प्पा की मोहरें वाकई में उनकी सबसे खास कलाकृतियों में से हैं। पहली वजह है उनका मटेरियल और बनावट। ज्यादातर मोहरें सेल खड़ी यानी स्टीयरटाइट नाम के एक मुलायम पत्थर से बनी हैं।
अच्छा।
इनका आकार ज्यादातर चौकोर होता था और इन पर जानवरों के चित्र, खासकर एक सींग वाला जानवर,
यूनिकॉर्न।
हाँ,
यूनिकॉर्न तो बहुत कॉमन है।
बिल्कुल, और कुछ चिन्ह बने होते थे जो शायद उनकी लिपि है।
और ये बहुत ज्यादा संख्या में मिली हैं, जिससे लगता है कि ये काफी आम रही होंगी।
हाँ, हजारों की संख्या में मिली हैं, लेकिन इनका असली इस्तेमाल और भी ज्यादा प्रैक्टिकल था, खासकर लंबी दूरी के व्यापार में।
वो कैसे?
सोचिए, आपको गुजरात से मेसोपोटामिया तक सामान का एक थैला भेजना है। आप थैले के मुंह को रस्सी से बांधकर उस पर गीली मिट्टी लगा देंगे और फिर उस मिट्टी पर अपनी मोहर दबा देंगे।
अच्छा,
बिल्कुल यही एनालॉजी है, बिल्कुल यही काम था।
मतलब ये भरोसे का काम करती थी।
हाँ, इससे सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि भेजने वाले की पहचान भी जाहिर होती थी।
ये एक तरह का मॉडर्न ट्रेडमार्क या ऑफिशियल स्टैम्प था।
और सबसे दिलचस्प बात, इन मोहरों पर एक लिपि भी है
जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है।
ये तो सच में दुख की बात है।
ये ऐसा लगता है जैसे उन्होंने हमें हजारों पोस्ट कार्ड्स भेजे हैं पर हम उन पर लिखा संदेश आज तक नहीं पढ़ पाए।
बिल्कुल, जिस दिन ये लिपि पढ़ ली जाएगी, शायद हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमारी पूरी समझ ही बदल जाए।
और इस समझ को बनाने का काम उन लोगों ने किया है जिन्होंने जमीन के नीचे दबे इन रहस्यों को खोजा, आर्कियोलॉजिस्ट्स। हमारा अगला सवाल इसी पर है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ वेरियस आर्कियोलॉजिस्ट इन द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा।
इसकी शुरुआत होती है अलेक्जेंडर कनिंगहम से, जो ASI के पहले डायरेक्टर जनरल थे। 19वीं सदी में उन्हें हड़प्पा से कुछ मोहरें मिली,
लेकिन वो समझ नहीं पाए कि ये कितनी पुरानी है।
बिल्कुल, वो उनके महत्व को समझ नहीं पाए। वो उन्हें भारतीय इतिहास के ज्ञात समय के साथ जोड़ने की कोशिश करते रहे और इस तरह एक बहुत बड़ी खोज करते करते रह गए।
तो फिर दुनिया को इस महान सभ्यता के बारे में पता कैसे चला?
इसका श्रेय जाता है 1920 के दशक में ASI के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल को। उन्होंने ही 1924 में पूरी दुनिया के सामने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का ऐलान किया।
1924 में?
हाँ, और ये एक सनसनीखेज खबर थी जिसने भारत के इतिहास को हजारों साल और पीछे धकेल दिया।
लेकिन मैंने सुना है कि मार्शल की खुदाई की तकनीक में कुछ खामियां थी।
हाँ, ये उनकी काम का एक सिहा पहलू है। वो हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन करते थे, मतलब एक बड़े इलाके की एक ही सतह पर एक साथ खुदाई।
इससे क्या दिक्कत थी?
दिक्कत ये थी कि इससे जमीन की अलग अलग परतें, जिन्हें स्ट्रेटिग्राफी कहते हैं, वो एक साथ खुद जाती थीं।
अच्छा।
ये ऐसा है जैसे आप इतिहास की एक किताब के कई पन्ने फाड़कर एक साथ मिला दें। आपको चीजें तो मिलेंगी पर ये पता नहीं चलेगा कि कौन सी घटना पहले हुई और कौन सी बाद में।
मतलब बहुत सारी जानकारी खो गई,
हमेशा के लिए खो गई।
और इस खोज में भारतीय पुरातत्वविदों की क्या भूमिका थी?
उनकी भूमिका बहुत अहम थी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा में और रखालदास बनर्जी मतलब आरडी बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में खुदाई की,
और दोनों को एक जैसी मोहरें मिली।
हाँ, और तभी जाकर जॉन मार्शल को यकीन हुआ कि ये दोनों शहर एक ही महान सभ्यता का हिस्सा थे।
तो खुदाई के तरीकों में सुधार कब हुआ?
ये सुधार 1944 में ASI के डायरेक्टर जनरल बने R.E.M. व्हीलर ने किया।
व्हीलर ने?
हाँ, उन्होंने मार्शल की गलती को पहचाना और स्ट्रैटिग्राफी यानी परत दर परत खुदाई के महत्व पर जोर दिया, जो कि एक ज्यादा साइंटिफिक मेथड था।
तो इस सवाल के जवाब के लिए हमें कनिंघम से शुरू करके मार्शल, साहनी, बनर्जी और आखिर में व्हीलर का योगदान बताना होगा।
बिल्कुल, मार्शल की 1924 की घोषणा और व्हीलर का स्ट्रैटिग्राफी मेथड, ये दोनों पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं।
ठीक है, और यही वैज्ञानिक तरीके हमें और भी गहरे सवाल पूछने में मदद करते हैं। जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चलता है कि हड़प्पा समाज में अमीर गरीब का फर्क था। हमारा आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। एक्सप्लेन द स्ट्रैटेजीज यूज्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट टू अंडरस्टैंड सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस अमंग द हड़प्पन्स।
ये समझने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट मुख्य रूप से दो रणनीतियां अपनाते हैं। पहली है कब्रों का अध्ययन यानी स्टडिंग बेरियल्स।
कब्रों से सामाजिक अंतर का कैसे पता चल सकता है?
देखिए, ज्यादातर हड़प्पन कब्रें बहुत साधारण हैं। मृतकों को बस एक गड्ढे में दफना दिया गया है।
अच्छा,
लेकिन कुछ कब्रों में हमें मिट्टी के बर्तन, ऑर्नामेंट्स और यहाँ तक कि तांबे के आईने भी मिले हैं।
मतलब मरने वाले के साथ उसका सामान भी दफनाते थे
कभी कभी। और ये जो अंतर है, यही बताता है कि शायद समाज में कुछ लोग दूसरों से ज्यादा धनी थे।
दिलचस्प है। और दूसरी रणनीति क्या है?
दूसरी रणनीति है मिली हुई चीजों यानी आर्टिफैक्ट्स का अध्ययन करना। आर्कियोलॉजिस्ट चीजों को दो श्रेणियों में बांटते हैं,
यूटिलिटेरियन
यानी रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें,
बिल्कुल,
और दूसरी लग्जरी यानी विलासिता की चीजें।
इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं?
जरूर। यूटिलिटेरियन चीजों में पत्थर की चक्कियां, मिट्टी के आम बर्तन और सुइयां आती हैं। ये वो चीजें हैं जो हर घर में हर जगह मिली हैं। लेकिन लग्जरी आइटम्स वो हैं जो दुर्लभ या महंगे नॉन लोकल मटीरियल से बनी हो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है फायंस के छोटे बर्तन।
फायंस, ये क्या चीज है?
फेंस कोई प्राकृतिक पत्थर नहीं था। इसे पिसी हुई रेत या क्वार्ट्ज को गोंद जैसी चीज के साथ मिलाकर बनाया जाता था, फिर उसे पकाकर एक खूबसूरत शीशे जैसी फिनिश दी जाती थी।
मतलब ये बनाना बहुत मुश्किल रहा होगा।
हाँ, बहुत जटिल और महंगा रहा होगा। इसीलिए ये बर्तन सिर्फ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी जगहों पर मिलते हैं, छोटी बस्तियों में नहीं।
क्या बात है। तो कब्रों में मिले सामान और इन लग्जूरियस आइटम्स के आधार पर आर्कियोलॉजिस्ट ये अंदाजा लगाते हैं कि हड़प्पा समाज में आर्थिक भिन्नताएं मौजूद थीं।
हाँ, हालांकि ये भिन्नताएं मिस्र जैसी नहीं थी, जहां राजाओं के साथ भारी खजाना दफनाया जाता था।
तो आज हमने हड़प्पा सभ्यता के कुछ सबसे बड़े सवालों को टटोला, उनकी बेजोड़ शहरी योजना से लेकर उनके रहस्यमयी पतन तक,
और उनकी पहचान बन चुकी मोहरों से लेकर उनके समाज की बनावट तक।
बिल्कुल, और हमने ये भी देखा कि कैसे आर्कियोलॉजिस्ट एक एक टुकड़े को जोड़कर एक भूली बिसरी सभ्यता की कहानी को फिर से जिंदा करते हैं।
सही कहा आपने।
और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने उनकी जटिल योजना, व्यापार और सामाजिक संरचना के सबूत देखे, लेकिन हम आज भी उनकी लिपि को नहीं पढ़ पाए हैं। सोचिए, जब तक हम उनकी भाषा को समझ नहीं पाते, तब तक हम उनकी जिंदगी के सबसे जरूरी पहलू, उनके विश्वास, उनके कानून या उनके इतिहास को पूरी तरह से गलत समझने का कितना बड़ा जोखिम उठा रहे हैं।
शायद सबसे बड़ा रहस्य अभी भी उन्हीं अनपढ़े चिन्हों में छिपा है।